ओम शांति। आज हम सभी के बीच में हमारी राजयोगिनी गीता दीदी हम सभी के सामने हैं। हम इनका बहुत दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सब गीता दीदी को तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं। आप पिछले 48 इयर्स से इस ज्ञान में हैं, इस यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 22 साल आपने गुजरात में अपनी सेवाएं दी और 16 साल ज्ञान सरोवर में आपने बहुत ही कुशल संचालन वहां का किया और अभी 6 सालों से आप शांतिवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप योग शिविर भी बहुत ही सुंदर कराते। और आपके लिए मैं दो लाइनें कहूंगी कि शांत मन है, मीठी है मुस्कान, जिन्हें अपने सेवा कार्यों से कभी नहीं होती है थकान, ऐसी मीठी प्यारी गीता दीदी का स्वागत है बारंबार बारंबार। अब हम सुनेंगे गीता दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सबने सुना सबने। कौन सी गीत की लाइन थी, कौन बता सकता है? हाँ कुमारियां बताओ, कौन सी लाइन थी? सफल कर लो सांसें अपनी। संगम युग वास्तव में वो युग है जिसमें हम अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा में ये जो कलियुग अंत सतयुग आदि का संगम युग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल युग है। वैसे तो संगम युग कितने हैं ड्रामा में, संगम युग कितने हैं ड्रामा में? हाँ, हर दो युग के बीच संगम युग है। सतयुग और त्रेता का भी संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, और द्वापर और कलियुग का संगम, पर चढ़ती कला का संगम युग कौन सा है? वो केवल अभी जो चल रहा है, कलियुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल, वो संगम युग अति महत्व का संगम युग है, क्योंकि ये चढ़ती कला का युग है। बाकी सब संगम युग में तो उतरते जाते हैं। अभी बाबा आते हैं और हमें चढ़ती कला में ले जाते हैं। आत्मा की उन्नति होती है, भक्ति में सत्यनारायण की कथा सुनते थे, सुनी है? हाँ, सत्यनारायण की कथा किस किस ने सुनी है? हाँ? अच्छा, प्रसाद तो सबने खाया होगा। हाँ, कथा सुने न सुने प्रसाद के टाइम तो पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि भक्ति में महत्व समझते हैं ना कथा का, क्योंकि कथा में क्या बताते हैं कि इस कथा करने से फायदा क्या है, न करने से नुकसान क्या है, इसका प्रसाद खाने से क्या फायदा है और अनादर करने से क्या नुकसान है, कथा क्या है वो तो कोई बताता ही नहीं है ना। सत्यनारायण कौन था और उसकी क्या कथा है वो तो कोई बताते नहीं, सिर्फ ये ही बताते हैं कि इससे फायदा क्या है। और उसमें लीलावती कलावती की बात आती है ना। अब बाबा ने हमें सत्य बताया कि वास्तव में कौन सचमुच नारायण था, सत्य नारायण सच में कौन था। नामधारी नारायण तो बहुत है ना, नामधारी नारायण तो अनेक है, परंतु गुणधारी लक्षणधारी सत्य सचमुच श्री नारायण कौन थे, कब थे और फिर क्या क्या हुआ, ये सारी बाबा आकर के 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तो है कथा कर्म की लीला और आत्मा की कला। कर्म की लीला अनुसार आत्मा की कला कम और ज्यादा होती है। द्वापर युग से हम उतरती कला कहते हैं, उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण क्या हुआ, क्यों उतरती कला हुई। बाबा कहते हैं ना कि दैवी कर्म से और दैवी धर्म से भ्रष्ट हुए तो आत्मा की उतरती कला हुई। तो कर्म की लीला और आत्मा की कला, बात ये है कि कर्म श्रेष्ठ है तो चढ़ती कला, कर्म भ्रष्ट है तो उतरती कला। तो संगम युग में चढ़ती कला, क्योंकि बाबा आकर के वो सत्य ज्ञान देते हैं जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, मन वचन कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि ज्ञान बाबा सत्य देते हैं। तो तीन चीज है संगम युग में, एक तो स्वयं भगवान हमारा गाइड बनता है, मार्गदर्शन देता है, रोज मुरली में क्या मिलता है, गाइडेंस मिलता है, रोज बाबा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। मुरली सिर्फ सुनाते नहीं है लेकिन हर बात समझाते हैं, सिखाते हैं। तो स्वयं भगवान हमारा मार्गदर्शक बनता है। द्वापर युग में जो भी ज्ञान सुना वो तो मनुष्य आत्माओं का सुना, उनकी कथाओं से सुना या उनके लिखे हुए शास्त्रों से सुना, परंतु मनुष्य आत्माओं का ही ज्ञान सुना ना। सत्य ज्ञान केवल बाबा सुनाते हैं, केवल बाबा सुनाते हैं। भक्ति में तो अज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, अनेक मते हैं, सत्य बाबा आकर बताते हैं। और जब तक सही ज्ञान ना हो सद्बुद्धि नहीं आ सकती, है ना। सत्य ज्ञान से सद्बुद्धि मिलती। बाबा की हम बच्चों को सबसे बड़ी देन कौन सी है? सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान जो ना होने के कारण भक्ति में भटकते रहते थे। भक्ति में क्यों भटकते थे? एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक गुरु से दूसरा गुरु, एक कथा से दूसरी कथा में, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में भटकते रहते थे, क्योंकि सत्य नहीं पता है। सत्य पता चल जाए तो भटकना समाप्त हो सकता है। तो बाबा की सबसे बड़ी देन है कौन सी? सत्य ज्ञान। ये सबसे बड़ी देन जिसने हमें भटकने से छुड़ाया, और सत्य ज्ञान से सद्बुद्धि आती, और सद्बुद्धि है तो सत्कर्म कर सकते। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है फिर आगे क्या कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, ऐसे कहते हैं ना। तो सबसे पहले भ्रष्ट क्या होता है? बुद्धि बिगड़ती है, और बुद्धि बिगड़ने का कारण क्या है? सही ज्ञान नहीं। तो ये बाबा की सबसे बड़ी देन है। खुश हैं आप सभी कि बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया। कई सोचते हैं ना कि बाबा और भी कुछ दे देता, थोड़ा पैसा भी दे देता, जमीन भी दे देता, कुछ मकान भी दे देता, पर अविनाशी बाबा विनाशी चीज कैसे देगा? बाबा तो अविनाशी है ना। अविनाशी बाप विनाशी चीज कैसे दे सकता है? अच्छा, सूक्ष्म निराकार बाबा स्थूल चीज कैसे देगा? इसलिए बाबा आकर के सत्य ज्ञान देते हैं। वो सबसे बड़ा खजाना है जिससे मन बुद्धि ठीक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक फिर वाणी और कर्म भी ठीक हो जाते हैं। और जिसके मन वाणी कर्म ठीक है, यथार्थ है, सत्य है, माना जीवन सत्य है। हम सारा पुरुषार्थ किस बात का कर रहे हैं? किस बात का कर रहे हैं? कि हमारा मन वचन कर्म श्रेष्ठ बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, तो ऑटोमेटिक सुख शांति समृद्धि अपने आप आनी है। वो तो अपने आप आने लगती है। भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाता, भविष्य भी श्रेष्ठ बन जाता, और वर्तमान में जब मन वचन कर्म श्रेष्ठ बनने लगते हैं तो हमें कितनी खुशी शांति। जब आपका कर्म सही है तो आप निश्चिंत रहते हैं कि कोई कुछ भी कहे मैंने गलत किया नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, है ना, आपको चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, क्योंकि सत्य कभी न कभी बाहर प्रकट होता ही है। इसलिए इस संगम युग में कलियुगंत और सतयुग आदि का संधि काल कल्याणकारी, पूरा नाम बताओ, संगम युग का पूरा नाम क्या है? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि परम पुरुष आकर हमें उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम माना उत्तम पुरुष, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं ना, सत्य ज्ञान बाबा देता है, स्वयं भगवान हमारा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, है ना? बाप टीचर सतगुरु बनकर गाइड करता है, सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान को धारण करवाता है जीवन में। रोज क्यों पढ़ाता है, है ना? रोज बाबा पढ़ाते हैं, वरना बाबा कह सकते थे ना कि भी सत्य ज्ञान दे दिया, आप अपने अपने घर में रहो और धारण कर। पर बाबा ने इसको विद्यालय क्यों बनाया, विद्यालय का स्वरूप क्यों दिया? क्योंकि रोज पढ़ाई जरूरी है। जब तक रोज आप अभ्यास नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, स्मृति में रहेगा नहीं, और याद नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ क्या करेंगे, अभ्यास क्या करेंगे, है? आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, कौन बताएगा? देखो, अपने आप को देखो, किसको याद है? हाँ हाँ, थोड़ा खड़े होके बोलो तो सुनाई भी दे। हाँ, थोड़ा आगे वाले बताओ क्या बता रहे। हाँ, आज का सार बार बार किया था, सर्विसेबल पर, है ना? जितनी अच्छी सेवा करेंगे अच्छा उजूरा मिलेगा। जब भी बाबा कहे क्या कहो? जी बाबा। हाँ, सेवा के लिए एवर रेडी। और लास्ट महावाक्य क्या था याद है? वो वरदान था, पर मुरली का लास्ट महावाक्य था कि सिर्फ मम्मा मम्मा नहीं कहना है, मम्मा जैसा बनना है। भगवान ने ब्रह्मा मुख से जो पढ़ाया उसमें फर्स्ट क्लास स्टूडेंट कौन था? मम्मा थी। मम्मा मॉनिटर बन गई ना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तो निमित्त बन गए, टीचर बन गए। तो याद होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। अगर पॉइंट्स याद नहीं है, ज्ञान स्मृति में नहीं, तो अभ्यास क्या करेंगे? इसलिए बाबा रोज पढ़ाते, विद्यालय बाबा ने इसको नाम दिया, ताकि रोज हम पढ़े, रोज रिवीजन करें, अभ्यास करें, रोज नए नए तरीके से ज्ञान को समझे। तो ये है गाइडेंस, मार्गदर्शन। रोज बाबा हमें श्री नारायण सत्य नारायण बनने का मार्गदर्शन देते हैं। महसूस करते हो ना कि बनते जा रहे हैं, क्या अनुभव है? महसूस हो रहा है हरेक को कि रोज बाबा के ज्ञान योग की पढ़ाई करते करते हम सच में मनुष्य से देवता बन रहे हैं। किस किस को ये अनुभव हो रहा है, खुद को देख के बताओ। एक दो को देख के हाथ नहीं ऊपर करना, पर खुद के परिवर्तन और प्रगति से बताओ किस किस को महसूस हो रहा है कि प्रैक्टिकली हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब हाथ ऊपर करो, अच्छी ताकत से हाथ ऊपर करो, आधा अधूरा नहीं। हाँ भाई, माताओं में भी बहुत है, भाइयों में भी बहुत है, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा गाइड कर रहा है, रोज मार्गदर्शन देना, ये पालना है ना बाबा की। बाबा हमारी पालना करते, पिता का प्यार हमें मुरली से मिलता है, है ना? बच्चे बच्चे कौन कहता है, आप सिर्फ बाबा का देख कर एक दिन करके देखो, बच्चे बच्चे सबके लिए निकलता है घर में, अभ्यास करके देखो, बच्चियों के लिए, बेटों के लिए, बहू के लिए, सबके लिए बच्चा बच्चा निकलता है, देखो अभ्यास कर। बाबा प्यार से, सिर्फ कहने की बात नहीं, प्यार से। बाबा हमें ऊंची नजर से देखें, ये है प्यार, ये है प्यार। भगवान कैसे प्यार करता है? चलो हम साकार बाबा के समय नहीं आए, अभी भी हमें स्टेज पर नहीं जाने देते, पर हम बाबा के प्यार को कैसे महसूस करते हैं? बाबा के महावाक्यों से, बाबा के नैनों से, बाबा के चेहरे से। और ये महावाक्य जिसमें बाबा हम बच्चों की कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, कितना बच्चों की महिमा करते हैं, हमारे में ऊंची भावना रखते हैं। भगवान ने कहा सिर्फ कि तुम मनुष्य से देवता बन सकते हो, और किसी ने कहा? आपने इतनी धारणा की, ज्ञान योग का रोज क्लास कर रहे हो, तो भी लोग क्या कहते हैं, ऐसे निकल पड़े हैं देवता बनने के लिए, ऐसे कहते हैं ना, क्या बनेंगे आप, देखो ये निकले हैं इतना लक्ष्य लेके, माना भावना नहीं है ना, ऊंची नजर नहीं। तो बाबा कितनी ऊंची नजर से देखते, कितना प्यार से समझाते, बार 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 प्यार से समझाते रहना, ये भी तो प्यार है। आप किसी को एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार समझा के फिर क्या होता है, चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, रहने दो, तुमको नहीं आएगा, रहने दो। तो ये क्या हो गया, प्यार कम हो जाता है। रिजेक्ट कर देना वो क्या है, वो तो घृणा हो गई ना, प्यार नहीं हुआ। हम कितनी बार भूले करते, जो बाबा कहते हैं वो आधा अधूरा करते हैं, तो भी बाबा कितना प्यार करते हैं, कितनी शुभ भावना रखते हैं, ऊंची नजर से देखते हैं, अच्छा संबोधन करते, एड्रेस करते हैं ना, सिकी लधे बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे बच्चे क्या क्या बाबा कहता है। तो ये प्यार और पालना है, इसको कहते हैं मार्गदर्शन, कि रोज बाबा गाइड करते, हिम्मत भरते हैं। बच्चे तूफान आएंगे पर कोई बात नहीं, तुम पुरुषार्थ करते रहो, माया को भगाओ, हिम्मत भरते हैं ना। हम बार बार बाबा के पास आते हैं और बाबा को कहते हैं बाबा तूफान आते हैं, फिर मुरली में जवाब आ जाता है बच्चे भगाओ, तूफानों को भगाओ, घबराओ नहीं, तुम अपना ज्ञान योग करते जाओ, अपने आप भागेगी, तुम उसको बिठाओ नहीं, महत्व नहीं दो। कि कोई आपके घर आवे और आप उसको महत्व नहीं दो तो वो तो फिर अपने आप जाएगा ना, कि कोई ढंग से मेरा महत्व नहीं है यहाँ, तो अपने आप उठ के जाएगा। तो माया को भी इम्पोर्टेंस नहीं दो। तो ये है बाबा की पालना, मार्गदर्शन। तो हमें सत्य ज्ञान भी मिलता है, स्वयं भगवान हमारा गाइड है। भक्ति में तो जो गाइड बने और ही हम भटक गए, है ना। इधर पूजा करो या फल चढ़ाओ या चावल चढ़ाओ या तिलक करो दीवार रखो, जो कुछ सिखाया पर हम तो भटक गए। तो बाबा ने सही गाइड किया। और तीसरी बात कौन सी है, ये समय चढ़ती कला का, ये समय चढ़ती कला का। तो टाइम का भी फेवर है, ड्रामा भी अभी फेवर में है, कि ये समय चढ़ती कला का है। देखो नदी का प्रवाह जिस दिशा में जाता हूं उस दिशा में नैया को ले जाना सहज है ना, उसके विपरीत जाना मेहनत की बात है, घर्षण की बात है। तो द्वापर युग से उतरती कला का टाइम था ना, वहां हमने बहुत चढ़ना चाहा, बहुत व्रत उपवास किए, बहुत कथा कीर्तन किए, बहुत तीर्थ यात्राएं की, है ना, बहुत दान पुण्य किए, क्योंकि आत्मा तो चढ़ना चाहती थी। पर रिजल्ट क्या हुआ, ये सब कुछ करते करते भी कहां पहुंच गए। द्वापर युग से करना शुरू किया, करते करते कहां पहुंच गए, कलयुग में पहुंच गए। उतरती कला का टाइम था ना, तो कितना भी चाहा, पुरुषार्थ किया, फिर भी चढ़ती कला नहीं है। तो ये समय है चढ़ती कला का। अभी जितना पुरुषार्थ करना चाहे सब कुछ सफल करना चाहे अभी करेंगे तो चढ़ती कला। आप कहो कि बाबा हमने भक्ति में बहुत याद किया, पर अभी कितना याद करते हो ये इम्पोर्टेंट है। भक्ति में तो आपने किया पर अभी क्या कर रहे। कोई कहे कि बाबा मैंने बहुत त्याग किया, बहुत कड़े कड़े व्रत उपवास किए, पर बाबा कहेगा कि अभी जब मैं सन्मुख आया हूं तब आप क्या कर रहे हैं। महत्व तो इस बात का है ना। देखो आप कोई मेहमान को बुलाते हो कि आप आओ भाई, आओ हमारे घर आओ, एक बार तो आओ, कभी नहीं आए हो, जरूर आओ। और जब वो आवे तब आप ध्यान ही नहीं दो तो कैसा लगेगा। हा? तब आप ध्यान नहीं दो, उसकी खातिरी नहीं करो, हा? टाइम नहीं दो, बिजी हो जाओ अपनी नौकरी में, तो उनको अच्छा लगेगा? हा? अच्छा लगेगा, वो तो सोचेगा ना कि ये तो बहुत बुला रहा था, पर अब जब आया हूँ तो मेरे साथ बैठता भी नहीं है, बात भी ढंग से नहीं करता है, कहीं घुमाता भी नहीं है, कुछ खिलाता भी नहीं है, सोचेगा ना? तो वो सोचेगा कि भी ये तो झूठा निमंत्रण था, जिगरी निमंत्रण नहीं था। तो अब आप सोचो, कंपेयर करो कि भक्ति में हमने क्या क्या किया, अब क्या कर रहे, अब क्या कर रहे। अब अगर हम कहे कि बाबा बहुत आपसे प्यार है, पर टाइम ही नहीं है आपसे बैठने का, टाइम ही नहीं है आपसे बात करने का, योग में बैठने का, तो बाबा को कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? बाबा समझ जाएगा ना कि इसका निमंत्रण सच्चा नहीं था, झूठा है, ऊपर ऊपर का है। अब मैं आया हूँ तो अब हमारे साथ बैठे। विदेशों में ऐसा होता है, जो इंडियंस फॉरेन गए हैं ना, तो वहां तो रोज नौकरी करनी पड़ती, मित्र संबंधी को ले जाते हैं और फिर खुद रोज नौकरी में लग जाते हैं, तो आप तो घर में कैद हो जाते हैं, वहां आपको कौन घुमाएगा, कहाँ ले जाएगा, और ये बंधन लगता है। तो सबसे पहली बात मुख्य है कि भगवान जब आया है उस समय हम क्या कर रहे हैं, महत्व अभी के समय का। अभी हम बाबा के साथ क्या कर रहे हैं, मुख्य है टाइम देना। इम्पोर्टेंस तो सबसे पहली चीज क्या है, समय देना, उनके साथ बैठना, बातचीत करना। आजकल दुनिया में भी क्या बताते हैं कि भाई धन कमा के दे दिया, पर अगर बच्चों को आप टाइम नहीं देते हैं तो बच्चे डिप्रेस रहते हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, मम्मी भी नौकरी पर जा रही है, पापा भी नौकरी पर जा रहे हैं, बच्चे को कोई टाइम नहीं दे रहा है। कहानी पता है ना कि एक ने पापा से पूछा कि पापा रोज आप कितना कमाते, बच्चे ने पूछा पिताजी से, तो बोला कि रोज का भाई 200 रुपया कमा रहा हूँ। तो उसने अपना गुल्लक निकाला, तोड़ा और उसमें से उसको 200 रुपये उसने लिए और पापा को दिया कि पापा ये 200 रुपये आप लो, एक दिन मुझे दो हफ्ते में। आप पैसा देते हैं पर हमारे साथ बैठ के बात नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं। टाइम देना माना जीवन देना, लाइफ देना है। भाई व्यक्ति 50 साल जिया है ना, हम ऐसे कहते हैं ना, टाइम में गिनती करते हैं ना लाइफ को, तो हमें भी बाबा को टाइम देना है। रोज अमृत वेले प्यार से याद करते, टाइम के साथ फिर और क्या चाहिए। अमृत वेले उठ के आप बैठेंगे बाबा के साथ, पर प्यार से बात नहीं करेंगे, निंद करेंगे, तो कैसा लगेगा कि भाई ये व्यक्ति बैठा तो है पर मेरे साथ बात तो कर नहीं रहा है, निंद कर रहा है। तो वो व्यक्ति भी कहेगा ना, भाई ऐसा करो कि आप सो जाओ, बहुत थके हुए लगते हो, आप सो जाओ, फिर फ्रेश होके उठो तो मेरे साथ बात कर। तो बाबा भी क्या सोचेगा। तो टाइम देना है और क्या चाहिए, प्यार, भगवान के साथ प्यार से बात करना है। बाबा ऐसा तो नहीं कहते ना 24 घंटा योग में बैठे रहो, बाबा तो क्या सिखाते हैं, एक तो अमृत वेले बैठ के याद करो और संध्या के समय बाबा को याद कर। रोज 6:30 बजे योग होता है ना, क्यों? संध्या का समय भी योग के लिए उत्तम समय है। और मुरली क्लास में जब जाते हो तब बाबा को याद कर। अगर आप रोज की दिनचर्या में कम से कम 3 घंटा भी विशेष बाबा की याद में बैठेंगे तो अपने आप 3 घंटा अच्छी तरह योग करेंगे तो सारा दिन अपने आप बाबा याद आएगा। ये बाबा ने कहा है कि जो अमृत वेले दिल से जिगरी प्यार से बाबा को याद करेंगे उनको सारा दिन बार बार स्वतः बाबा याद आता रहेगा। तो आज का वरदान क्या था, आज का वरदान क्या था, बनना क्या है उससे, स्वतः और निरंतर योगी भव, नेचुरल बाबा याद आता रहे। अमृत वेला फाउंडेशन है ना, अमृत वेला अच्छा योग करेंगे तो सारा दिन बाबा याद रहेगा। संध्या का योग अच्छा करेंगे तो पूरी रात सात्विक निंद्रा में जाएंगे, बाबा की याद रहेगी, निंद्रा योग निंद्रा में बदल जाए। ये योग का चार्ज जो बढ़ाना चाहते हैं ना, तो बाबा ने उसकी युक्ति बताई कि हर व्यक्ति 5-6 घंटा तो सोता है ना रात को, उसको योग निंद्रा में कन्वर्ट कर तो आपका चार्ज बढ़ा सके। तो दिनचर्या में ये फिक्स करो, ऐसा नहीं कि टाइम मिले तो याद करना है, वो तो दूसरों को ऐसा करना है, पर जो जिगरी अपना होता है उनके लिए तो क्या करते, कितना भी बिजी होंगे कहीं से भी टाइम निकाल करके उनसे मिलेंगे जरूर। तो ये एक फिक्स कि रोज बाबा के साथ बैठना है, प्यार से बैठना है, बिल्कुल जागृत एकाग्र होके बैठना है। आप, मैं आपसे मान लो बात कर रही और आप बार बार इधर देखो, थोड़ी देर के बाद इधर देख, थोड़ी देर के बाद इधर, तो मुझे लगेगा ना कि मेरी बात आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा बात करने। तो बाबा हम बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, और मन से अगर हम इधर भागे उधर भागे, वो बात याद किया, वहां बुद्धि से चले गए, शरीर से योग में बैठ गए पर मन से बाजार में गए, किचन में गए, ऑफिस में गए, मित्र संबंधी के घर गए, तो बाबा तो सोचेगा ना कि मैं बात कर रहा हूं मिल रहा हूँ और ये तो बुद्धि से ध्यान नहीं दे रहा है मेरे तरफ, तो मजा नहीं आएगा बात करने में, मिलन का आनंद नहीं आएगा। तो क्या क्या देना है बाबा को? सबसे पहले समय देना है, जागृत मन बुद्धि और जिगरी प्यार, प्यार से बात करते, प्यार से बात करते। अब प्यार से बात करना कोई सिखाने की चीज है क्या? हर आत्मा को याद करना और प्यार करना आता है? आता है हर एक को आता है, हर एक किसी न किसी को याद करते हैं, हर एक किसी न किसी को प्यार करते हैं, है ना? जीवन में ये अनुभव है। तो बाबा के साथ योग करना माने क्या करना है? क्या करना है? बाबा को याद करना है और प्यार करना है, ये आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सीखना है। ये सीखना है इसलिए, और याद से ही तो सांस से सफल होगी ना। बिना याद की सांसों का तो कोई अर्थ नहीं है, वो तो संसार का हर प्राणी जी रहा है, सांसें ले रहा है, पर ये हमारे सांस सफल तब है ना जब साथ में याद भी जुड़े, स्मृति भी हो तो श्वास सफल होते। और जहां आपका दिल लगता है, प्यार है जहां, वहां तो सब कुछ इंसान कुर्बान करता है। देखो जिसके लिए प्यार है उसके लिए सब कुछ है कि नहीं? उसके लिए सब कुछ है, ये तन मन धन सब उस पर कुर्बान है। फिर वो कहना नहीं पड़ता है ना, फिर कहना नहीं पड़ता है। संबंध का अर्थ ही है प्रैक्टिकल सब कुछ लगाना। आप रिलेशन निभाते हैं माना क्या करते? संबंध निभाना किसको कहते? भी एक दो से मिलना, एक दो के प्रसंग में जाना, कुछ ना कुछ अपना साथ सहयोग देना, है ना, समय पर मदद करना, शुभ भावना रखना, इसी को संबंध निभाना कहते हैं। तो ये बाबा के साथ, क्योंकि भगवान सृष्टि पर कितनी बार आते हैं? एक ही बार संगम युग में, है ना, एक ही बार आते हैं संगम युग में। इसलिए अभी ही मौका है संकल्प, श्वास, समय, मन, बुद्धि, दिल का सच्चा प्यार, धन, साधन, गुण, विशेषता, कला, जिसके पास जो है उसको सफल करना। सफल करने का अर्थ है ईश्वरीय कार्य में लगाना, जिसके पास जो है वो लगाना है। टाइम है तो टाइम बाबा को दो, बुद्धि है तो बाबा की सेवा का प्लानिंग करो, संपर्क संबंध है तो बाबा का कार्य कराओ, बोलने की कला है तो ज्ञान दान करो, तन में शक्ति है यज्ञ सेवा करो, धन है धन लगाओ, कोई कला है, हर एक में कला होती है ना, किसी में नृत्य की कला है, किसी में भोजन बनाने की कला है, सिलाई की कला है, पेंटिंग की कला है, इलेक्ट्रिक काम करने की कला है, कईयों में कारपेंटरी का है, कंप्यूटर चलाने का है, जिसके पास जो कला है हमें क्या करना है, हर प्रकार से बाबा के साथी बनना है। तो खुद की कला, खुद की सब खजाने सफल है ना, श्रेष्ठ कार्य में लगाना, उसे सफल के। सफल किसको कहा जाए, सही यथार्थ श्रेष्ठ कार्य में लगाना उसको सफल करना कहा जाता है। और श्रेष्ठ कार्य सत्कर्म करने का समय अभी है, संगम युग है। भक्ति में अच्छे कर्म करते पर सत्कर्म नहीं होते, क्योंकि आत्मा ही सत्य स्थिति में नहीं है तो सत्कर्म कहां से होंगे। आत्मा को सत्य स्थिति में, सतो प्रधान स्थिति में तो अभी बाबा स्थित कराते हैं ना, अभी ही सत्कर्म हो सकते हैं। बाकी द्वापर से दान पुण्य सब कुछ करते हैं, अच्छे कर्म है पर है तो देह अभिमान में किए हुए है ना, है तो देह अभिमान में किए, बल समाज सेवा करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, परिवार का ध्यान देते हैं, पर मैं आत्मा अगर देह अभिमान में हूँ और देह अभिमान के से उत्पन्न हुए विकार के वश हूँ तो सत्कर्म तो हो ही नहीं सकता है। सत्कर्म संगम युग में है और अभी के सत्कर्म का एक स्पेशल हिसाब है कि एक करेंगे और अनेक गुना फल मिले। वैसे ड्रामा में कर्म का सिद्धांत क्या है, एक करो एक पाओ, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, जो करेगा वो पाएगा, कर्म का हिसाब तो यही है ना? पर संगम युग में बाबा आकर स्पेशल ऑफर देता है, जैसे सीजन में बोया हुआ एक बीज प्रकृति उसका क्या करती है, अनेक बीज बना के देती। प्रकृति में भी सीजन की शक्ति है ना, सीजन में बोया हुआ बीज कहते हैं ना, कण बो और मण पाओ, ये प्रकृति के लिए कहते कितना अनाज दाना बोते हैं, यहाँ होंगे ना खेती करने वाले कोई भाई है, हाँ तो देखो बीज बोते हैं तो कितना बोते और फसल कितनी मिलती। तो प्रकृति में भी शक्ति है कि वो भी सीजन में बोए हुए बीज का अनेक गुना फल देती है। तो ये तो कौन है, भगवान है, प्रकृति का भी रचयिता बाबा आया है, संगम युग है। अभी जो सत्कर्म के बीज बोएगा वो बाबा कहते हैं ना, 100 गुना 1000 गुना पदम गुना उसका फल मिली। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है, क्या करना है? भाई आवाज से नहीं बोल रहे हो, ढीला ढीला बोल रहे हो, क्या करना है? उमंग से बोलना है ना कि अभी हमें जरा भी अलबेला नहीं बनना है, आलस नहीं करना है, अभी हमें बाबा और समय ड्रामा को बुद्धि में रख कर हर कर्म रूपी बीज श्रेष्ठ बनाना है। ठीक है? ये संगम युग का हिसाब है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी सफल करो तो सफलता पाओ। दो युग का भाग्य बाबा बनाते हैं और वास्तव में तो एक जन्म का पुरुषार्थ और पूरे ड्रामा की प्रारब्ध बन जाती। भगवान ने गारंटी दी है ना कि दाल रोटी हर जन्म में मिलेगी जो अभी भगवान के साथी बनते हैं। तो पक्का है, पक्का है। अब बाबा आया है तो रोज चेक करेंगे कि अब बाबा आया है तो मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए दादी रोज पक्का कराती हैं, 3 बार ओम शांति कहकर, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये रोज 3 प्रश्न खुद को रिवाइज कराना कि मैं कौन हूँ, महसूस करना, मेरा कौन है वो महसूस करना है और उसके आधार पर ये विवेक प्राप्त करना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओम शांति।